Right.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، ہمارے پر قرآن جلد نمبر 3 میں سے، اور آیت نمبر 5 ہی کے معارف و مسائل ہم پچھلے کچھ کلاسز میں سے پڑھ رہے ہیں. تو پچھلی کلاس میں تو ہم بلکہ آگے بڑھے ہی نہیں تھے، بلکہ جہاں پر اس سے پچھلی والی کلاس میں چھوڑا تھا وہیں پہ ہی رہے تھے، کیونکہ پچھلی کلاس کے اندر ایک کافی لمبی ڈسکشن شروع ہو گئی تھی. بلکہ یار ڈسکشن تو خیر کیا ہوئی تھی، لیکچر شروع ہو گیا تھا الحاد کے بارے میں، کفر نفاق کے بارے میں، اور ففتھ جنریشن وار فیئر کے بارے میں، کچھ شطرنج وغیرہ کے بارے میں بھی اس میں بات ہو گئی تھی. تو آج ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 47 کے اوپر ہیں، جو شاید آپ کے سامنے ڈسپلے بھی ہوا وہ ہوگا، کیونکہ میرے سامنے چیٹ کی ونڈو کھلی ہوتی ہے تو مجھے وہ اسکرین شیئر نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو 47 پیج کے اوپر ہم تھے، اس میں آخری بار جو ہم نے پڑھ لی تھی پہلا پیراگراف، کہ اس جگہ جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک کھانے سے مراد ذبیحہ جانور ہیں. یعنی آیت نمبر 5 میں جو طعام کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو طعام ڈکشنری میننگ میں تو مطلق کھانے کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا اس کو طعام کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی پراپر کھانا، یعنی کہ مٹی کھا رہے ہیں اسے پیٹ بھر لیا تو اس کو کھانا نہیں کہیں گے، لیکن سبزی، دال، چاول، گرینز ہیں، یا جو ہے وہ ویجیٹیبلز ہیں، یا میٹ ہے، یا ڈیری پروڈکٹس ہیں، ایگ ہے، وہ سب کچھ طعام میں آتا ہے. تو یہاں اس آیت کے اندر لفظ طعام سے مراد ذبیحہ جانور ہے. کیسے بھائی؟ اللہ سے پوچھ کر آئے تھے کوئی، ٹھیک ہے، صحابہ تابعین نے اللہ سے جا کے پوچھا کہ اللہ آپ کے کلام کے اندر لفظ طعام کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی ایکسس کسی انسان کو دیا ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے قرآن کی تفسیر پوچھ کر کے نہیں آئے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، بلکہ دیکھا اللہ تعالیٰ کو جیسے بھی دیکھا، ذرا بھی اپنی نظر ادھر ادھر نہیں کری، اور نماز کا تحفہ لے کر کے ہمارے لیے واپس آ گئے، لے کر واپس آ گئے وہاں سے، ٹھیک ہے. تو پھر کیسے پتا چلا کہ طعام سے مراد ذبیحہ جانور ہیں؟ تو آگے الحمدللہ بڑے اچھے سے سمجھایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عن، ابراہیم، قتادہ، سدی، وہاق، مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہی منقول ہے. روح المعانی و جساس، کیونکہ وجہ بتا رہے ہیں کیوں انہوں نے ایسی بات کہی، کیونکہ دوسری قسم کے کھانوں میں اہل کتاب اور بت پرست مشرقین سب برابر ہیں، کہ روٹی، آٹا، دال، چاول، پھل وغیرہ جن میں ذبح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیلے کو ذبح نہیں کیا جاتا وغیرہ، وہ کسی بھی جائز طریقے پر حاصل ہو تو مسلمان کو اس کا کھانا جائز ہے. یعنی چوری کر کے تو نہ مسلمان سے چوری کر کے مسلمان کے لیے جائز ہوگا، نہ کافر سے چوری کر کے مسلمان کے لیے جائز ہوگا، لیکن اگر خرید کر کے پراپر طریقے سے ہدیہ اس نے دے دیا، ہدیہ بھی اس کا جائز ہوتا ہے، کافر کا ہدیہ بھی جو ہے لینا جائز ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے پتہ چلتا ہے یہ والی بات کہ کافر کا ہدیہ جائز ہے. مسلمانوں سے ان کو یعنی اور مسلمانوں سے ان کو ملے، یعنی کافروں کو اگر مسلمانوں سے ملے تو وہ ان کے لیے حلال ہے. اس لیے خلاصہ مضمون اس جملے کا یہ ہوا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمان کے لیے اور مسلمان کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے. مسلمان کے ذبیحے کا ذکر کیوں کیا گیا، یہ پہلے ہم خلاصہ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں. اب اس جگہ چند مسائل قابل غور ہیں، ٹھیک ہے. پچھلی کلاس میں ایک اور بھی بات شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ آیت نمبر 3 کے اندر تو اللہ رب العزت نے ایکسپلسٹ ایکسپلسٹ کا لفظ ہوتا ہے نا انگریزی کا، यानी बाकायदा नाम ले करके हराम चीजें गिनवा दी। लेकिन आयत नंबर 5 में क्या मामला चल रहा है? आयत नंबर 5 के अंदर एक्सप्लिसिट मामला एज सच नहीं है, बल्कि इम्प्लिसिट मामला है। इम्प्लिसिट यानी कोई चीज इम्प्लाई कर दी है, कोई चीज जो है वो किसी चीज की तरफ दलालत करती है, इसको इम्प्लाई करना कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। तो यहां पर इम्प्लिसिट मामला जो है वो ज्यादा गालिब है आयत नंबर 5 के अंदर। तो इम्प्लिसिट कैसे होता है? वॉर करने से पता चलता है ना कि फलानी चीज की तरफ इशारा करी, उसके लिए वॉर करना पड़ता है, तदब्बुर करना पड़ता है, तहकीक करनी पड़ती है। तो वही फिर आगे हज़रत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, काबिले गौर मसाइल। अव्वल ये कि अहली किताब कुरान सुन्नत की इस्तेलाह में कौन लोग हैं? किताब वाले भाई, हमारे सामने भी किताब है, रखी हुई है, हमारे हाथ में किताब रखी हुई है, उम्मीद है कि आपके सामने भी रखी होगी। तो आप अहली किताब हो गए क्या? राइट, पुरानी इस्तेलाह में अहले किताब से मुराद मैं और आप तो नहीं है, हालांकि हमारे हाथ में किताब है, तो फिर कौन मुराद है? तो फरमाते हैं किताब से क्या मुराद है, कौन सी किताब मुराद है, और क्या अहले किताब होने के लिए ये भी जरूरी है कि वो लोग अपनी किताब पर सही तौर से ईमान और अमल रखते हों? इसमें ये तो जाहिर है कि किताब के लुघवी मानी यानी हर लिखा हुआ वरक तो मुराद नहीं हो सकता, क्योंकि डिक्शनरी मीनिंग तो किताब की एनीथिंग दैट इज रिटन, ठीक है, या एनीथिंग दैट इज मेड कंपल्सरी, वो भी जो है वो अरबी जुबान के अंदर कतबा यक्तुबु, जैसे कुतुबा अलैकुम अस्सियाम, कि लिख दिया कि तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे, तो इसका मतलब क्या है? रमजान के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज हो गए। तो कतबा यक्तुबु का लफ्ज जो है वो फर्जियत के लिए भी इस्तेमाल होता है, या अल्लाह ताला ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया, राइट, जो कि खवातीन की क्लास के अंदर सूरह अनाम की, बल्कि जुमे के दर्स के अंदर भी सूरह अनाम की आयात क्या चल रही है? कतबा रब्बुकुम, क्या था वो? सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए अपने ऊपर रहमत करना वाजिब कर लिया, ठीक है। तो कतबा का लफ्ज कितने मानों में इस्तेमाल होता है? तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया, जैसे रमजान फर्ज कर दिया उसके लिए भी कतबा का लफ्ज आ रहा है, अपने ऊपर वाजिब कर लिया उसके लिए भी कतबा का लफ्ज आ रहा है, और किताब यानी एनीथिंग दैट इज रिटन डाउन उसके लिए भी कतबा का लफ्ज आ रहा है, ठीक है। तो अब कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा ना कि यहाँ पे कौन से वाले कतबा का इस्तेमाल हो रहा है। तो फरमाते हैं कि ये बात तो जाहिर है कि किताब के यहाँ पर लुगवी मानी, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में लुगवी मानी जो है वो हर लिखा हुआ वर्द मुराद हर लिखा हुआ वर्क मुराद नहीं हो सकता, वही किताब मुराद हो सकती है जो अल्लाह की तरफ से आई हो, ठीक है। इसलिए ब इत्तेफाक उम्मत यानी ब इजमाए उम्मत मीन्स कंसेंसस ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ द उम्मत, ठीक है। तो ब इत्तेफाक उम्मत किताब से मुराद वो आसमानी किताब है जिसका किताब अल्लाह होना बतस्दीक कुरान यकीनी हो, कुरान की तस्दीक से बात कंफर्म हो कि हाँ ये किताब है, आसमानी किताब, ठीक है। कुतुबे क्या कहते हैं उसको, आसमानी किताब। तो जैसे तौरात, इंजील, जबूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी, जबूर, सुहफ मूसा व इब्राहिम वगैरह, ठीक है, क्योंकि इन सब का जिक्र जो है वो कुरान मजीद के अंदर है। इसलिए वो कौमें जो किसी ऐसी किताब पर ईमान रखती और उसको वही इलाही करार देती हों जिसका किताबुल्लाह होना कुरान सुन्नत के यकीनी जराए से साबित नहीं है, वो कौमें अहले किताब में दाखिल नहीं होंगी, जैसे मुशरिकीन मक्का, मजूस, बुत परस्त हिंदू, बुद्ध, आर्या, सिख वगैरह, ठीक है। अब मुशरिकीन मक्का की किसी किताब का तो हमें पता ही नहीं, मजूसियों की भी किताब का हमें पता नहीं, लेकिन उनके नाम लिखे में बड़े मुश्किल मुश्किल से नाम होते हैं मजूसियों के, फायर वर्शिपर्स के, जिसमें जो कि पारसी, हमारे यहाँ पारसी कहलाते हैं वो लोग, ठीक है, उनकी किताब का भी हमें कोई ऐसा नाम याद नहीं होता। लेकिन बुत परस्त हिंदुओं और सिखों की जो किताबें हैं उनका तो मेरे ख्याल में आप किसी भी अक्सर को नाम याद होगा, हम पाकिस्तान में रहकर क्या इन्हें ज्यादा नहीं पता होता, लेकिन रामायण का नाम बड़ा सुना हुआ है और इस तरह की और भी इनकी किताबें मशहूर हैं हिंदुओं की और सिखों की। तो ये रामायण वगैरह जो है इनका कोई जिक्र हमें कुरान मजीद में और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में नहीं मिलता, हदीस मुबारक में, सुन्नत से यहाँ पे मुराद हदीस मुबारक में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये लोग अहले किताब नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अगरचे कि हमारा यकीन है कि दुनिया में हर इंसान जो है ना, उसका ऊपर जो लिंक जाके मिलता है वो दीन इस्लाम से ही मिलता है, हर इंसान का लिंक ऊपर जाके दीन इस्लाम से ही मिलता है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में जब जो इंसान उतरे वो सारे के सारे मुसलमान थे, आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, अम्मा हव्वा मुसलमान थी, उनके सारी औलादें मुसलमान थी, ठीक है। लेकिन बाद में जा करके जो है वो शैतान ने उनके अधियान को चेंज करवाया, उनके पास जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत की किताबें आई थी उनको मस्क करवा दिया, और इस तरीके से हिंदुओं की भी किताबें तब्दील हो गई और जो है वो
आराम
दूसरे
कर
किताबें
लीजिए ना आप पास सब।
तब्दील हो गई। लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक नहीं चलेगी, बल्कि अहले किताब से मुराद सिर्फ वो किताब के मानने वाले जिनका कि कुरान और सुन्नत में जिक्र है, ठीक है। क्या ग्रंथ साहब फॉर सिक्स, अच्छा कैसे लिखते हैं? तो कहते हैं कि वो कौम इसमें शामिल नहीं होंगी, तो हिंदू और बुद्ध मत वगैरह जो है उसमें से निकल गए। इससे मालूम हुआ कि यहूदो नसारा जो तौरात व इंजील पर ईमान रखने वाले हैं वो बइस्तिलाह कुरान अहले किताब में दाखिल है, ठीक है। तीसरी एक कौम जिसको साबिईन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहूदो नसारा का जिक्र जो है वो कुरान मजीद में जा बजा आया है और अहले किताब के तौर पर ही आया है। एक तीसरी कौम जिसको साबिईन कहते हैं, उनके हालात मुश्तबा हैं, जिन हजरात के नजदीक ये लोग जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, जिन हजरात से मुराद जिन उलमाए कराम के नजदीक ये साबिईन जो है ना, ये दाऊद अलैहिस्सलाम पर की किताब जबूर पर ईमान रखने वाले हैं, वो उनको भी अहले किताब में शामिल करार देते हैं। और जिनको ये तहकीक हुआ, यानी जिनकी तहकीक से ये बात साबित हुई कि जबूर से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये नजूम परस्त लोग हैं, यानी सितारों की परस्तिश करने वाले लोग हैं, वो उनको बुत परस्तों और मजूस के साथ शरीक करार देते हैं, ठीक है। क्योंकि सितारों की परस्तिश जो है ये खालिसतन यानी मुशरिकीन के कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो वो उनको बुत परस्तों और मजूस के साथ करार देते हैं, यानी उलमा के दरमियान, उलमाए इस्लाम के दरमियान इज्तिहादी डिफरेंस हो गया, ठीक है। एक ग्रुप का इज्तिहाद ये हुआ कि साबीन जो हैं वो जबूर पर ईमान रखने वाले हैं, और दूसरों का इज्तिहाद जो कि उनकी तहकीक की बुनियाद पर वो इस नतीजे पहुंचे, इसी को इज्तिहाद कहते हैं ना, तो उनके नजदीक ये वो नहीं है, यानी जबूर पे ईमान रखने वाले लोग नहीं। बहरहाल यकीनी तौर पर जिनको बइत्तेफाक अहले किताब कहा जाता है वो यहूदी नसारा है, यानी जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक है, सारे उलमा, कोई इसमें जो है वो इज्तिहादी डिफरेंस नहीं है कि यहूद नसारा तो फॉर श्योर अहले किताब। तो कुरान हकीम के इस हुक्म का हासिल ये हुआ कि यहूद नसारा का जबीहा मुसलमानों के लिए और मुसलमानों का जबीहा उनके लिए हलाल है। ठीक है, बार बार ये बात आ रही है, तो अगरचे कि हम खुलासे तफसीर में इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन एक दफा फिर इसका जिक्र कर देते हैं कि अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि मुसलमानों का जबीहा उनके लिए हलाल है, हालांकि वो तो मुसलमानों से आके नहीं पूछ रहे कि हाँ भी हम आपका जबीहा खा सकते हैं, आपकी इजाजत है तब हम आपका जबीहा खाएं, वो तो मुसलमानों से नहीं पूछते, और ना वो हमसे पूछते हैं कि भी हलाल है कि हराम है, उनको क्या परवाह इस बात की कि वो हलाल है कि हराम है इस्लाम के अंदर, ठीक है। तो वो क्यों अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारा जबीहा उनके लिए हलाल है, यकीन करवाने के लिए, कि जिस तरह ये बात यकीनी है कि तुम्हारा जबीहा उनके लिए हलाल है, कि वो तो खाते ही खाते हैं तुम्हारा खाना, जब उनको जरूरत पड़ती है वो खाते हैं, हलाल हराम की कोई डिस्कशन ही नहीं, उसी तरीके से उनका जबीहा तुम्हारे लिए हलाल, ठीक ठीक है, यानी इसके अंदर जो है ना वो कोई डाउट की जरूरत नहीं है कि उनका जबिया पता नहीं हलाल है कि नहीं हलाल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये असलूब बयान कहलाता है कुरान मजीद। इस तरह का असलूब बयान और भी मकामात के ऊपर इस्तेमाल फरमाता है। ठीक है, और कुदरतन यही जो हम सूरह मायदा में पढ़ रहे हैं वही जो है खवातीन की क्लास के अंदर सूरह अनाम के अंदर भी इस बिल्कुल इसी तरह का असलूब बयान वाला मसला आया कि अल्लाह ताला ने एक यकीनी बात को इस्तेमाल करके किसी मुतहम्मल बात को हमारे सामने रखा। ठीक है, जिस बात में इहतमाल हो सकता है ना उसको मुतहम्मल बात कहते हैं। तो एहतमाली बात को कैसे प्रूव किया अल्लाह ताला ने हमारे यानी हमारे दिमाग में गोया कि उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। जिस बात पे हमें कुछ डाउट हो सकता था, एहतमाल हो सकता था, उसको हमारे दिमाग में कैसे क्लियर कर दिया, उसको किसी ऐसी बात के मसावी करार दे करके जो कि हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी, जो कि हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी। ठीक है, तो इन दोनों को मसावी करार दे करके अल्लाह ताला ने एक ऐसी बात को जो कि हमारे दिमाग में जरा आसानी से नहीं आ रही थी, ठीक है, उसको जो है वो हमारे सामने पेश किया। तो ये असलूब कुरान कहलाएगा। ठीक है, अब रहा ये मामला कि यहूद नसारा को अहले किताब कहने और समझने के लिए क्या ये शर्त है कि वो सही तौर पर असली तौरात और इंजील पर अमल रखते हों। असली तौरात जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल करी और इंजील जो कि ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल करी, क्या बिल्कुल उसी शक्ल वाली तौरात पे वो यकीन रखते हो या मुहर्रफ तौरात और इंजील का इत्तेबा करने वाले। मुहर्रफ मतलब जो कि तहरीफ शुदा, तहरीफ का मतलब होता है चेंज मैनिपुलेटेड। ठीक है, जो कि चेंज की जा चुकी है उस तौरात और इंजील का इत्तेबा करने वाले और ईसा व मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा का शरीक करार देने वाले भी अहले किताब में दाखिल। ठीक है, अब ये एक तालिबे इल्माना सवाल है। ठीक है, जो भी गौर से बात पढ़ता है और सुनता है तो उसके जहन में ऐसे तालिबे इल्माना सवाल आते हैं और आने चाहिए। ठीक है, तो ये एक सवाल आता है कि भाई कौन सी यहूद नसारा मुराद है, प्योर यहूद नसारा या जो तहरीफ शुदा यहूद नसारा है। सो कुरान करीम की बेशुमार तस्रीहात से वाजे है कि अहले किताब होने के लिए सिर्फ इतनी बात काफी है कि वो किसी आसमानी किताब के कायल हो और उसकी इत्तबा करने के दावेदार हो। ठीक है, यानी कायल होने से मुराद कि वो मानते हो कि हाँ भाई ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब, इसको कहते हैं कायल। ठीक है, और उसके इत्तबा करने के दावेदार का मतलब ये कि वो ये भी कहते हो कि हाँ हम इसकी इत्तबा करते हैं, हम इसको फॉलो करते हैं, बस इतना सा काफी है। ख्वाह वो उसके इत्तबा में कितनी गुमराहियों में जा पड़े। ठीक है, पुराने करीम ने जिनको अहले किताब का लकब दिया उन्हीं के बारे में ये भी जा बजा इरशाद फरमाया कि ये लोग अपनी आसमानी किताबों में तहरीफ करते हैं। युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़िही। ठीक है, कि ये भी यानी ये जो है वो उसके जगह से उसको उसको उसके अंदर तहरीफ करते हैं। और ये भी फरमाया कि यहूद ने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दे दिया और नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वकालत यहूदु वल वउजैर इब्नुल्लाही वकालत नसारु अल मसीह इब्नुल्लाही। ठीक है, अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया कि यहूद जो है वो उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं और नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स मुस्लिम्स कैन मैरी अहले किताब विदाउट कन्वर्टिंग देम। अभी तो आगे पूरी डिस्कशन आ रही है ना, खाली खाने पे बात खत्म की थोड़ी होगी, आयत का दूसरा हिस्सा भी तो अभी आने वाला है, तो आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह बेगम साहिबा को फिक्र करवाने की जरूरत है, आप फिक्र ना करें। ठीक है, इंशाल्लाह उस पर बड़ी तफसील से उस पर बात होगी, लेकिन आपकी सवाल का जो है ना वो क्विक आंसर यही है कि यस ऑफ कोर्स। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मींस विदाउट कन्वर्टिंग। ठीक है, लेकिन अगेन there are, details in it. अच्छा, इन हालात सिफात के बावजूद जब कुरान ने उनको अहले किताब करार दिया तो मालूम हुआ कि यहूद और नसारा जब तक यहूदियत व नसरानियत को बिल्कुल ना छोड़ दें वो अहले किताब में दाखिल, बिल्कुल ना छोड़ दें ना उस वक्त तक वो अहले किताब में दाखिल। ख्वाह वो कितने ही अकायदे फासिदा और आमाले सैयाह में मुबतला हों। ठीक है, यानी उनके अकायद जो है वो कितने ही खराब हो चुके हों और आमाले सैयाह यानी बुरे आमाल करने वाले हों, फिर भी वो अहले किताब दाखिल है, एज लॉन्ग एज के वो किसी आसमानी किताब को अल्लाह की उतारी हुई किताब मानते हों, प्लस वो ये भी कहते हों कि हम इसके इत्तेबा करें। ये दो बात, ठीक है ना, दैट क्वालिफाई देम टू बी अहले किताब। ठीक है, इमाम जस्सास ने अहकाम कुरान में नकल किया है कि हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु के अहद खिलाफत में आपके किसी आमिल या गवर्नर ने एक खत लिखकर ये दरियाफ्त किया कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो तौरात पढ़ते हैं और यौम सब्त यानी हफ्ते के दिन की ताजीम भी यहूद की तरह करते हैं। तौरात की किताब पढ़ते हैं मतलब कि तौरात को अल्लाह की किताब मानते हैं, उसकी बाकायदा तिलावत करते हैं जो पढ़ते हैं उसको, और यौम सब्त यानी हफ्ते के दिन को की ताजीम करते हैं, क्योंकि तौरात के अंदर हफ्ते के दिन की, जैसे हमारे यहाँ जुमे की ताजीम है उसी तरह ज्यूस के अंदर सैटरडे की ताजीम होती है, मगर कयामत पर उनका ईमान नहीं है कि कयामत नहीं है, नहीं होने वाली है। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ क्या मुआमला किया जाए? तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीर फरमाया कि वो अहले किताब ही का एक फिरका समझे जाएंगे, यानी है वो अहले किताब ही लेकिन उसी का एक डिविएटेड सेक्ट कह लेंगे, लेकिन विद इन द अहले किताब, जैसे मुसलमानों में डिविएटेड सेक्ट्स होते हैं ना, ये खवारिज हैं या रवाफिज हैं या जो है वो मोतजिला हैं या करामिया हैं, ये क्या है, ये डिविएटेड सेक्ट्स विद इन इस्लाम है। ठीक है, तो ये नहीं कह रहे कि डिविएटेड सेक्ट्स जो होते हैं वो जन्नत में जाएंगे, ये कुछ थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन ये डिविएटेड सेक्ट्स विद इन इस्लाम कहलाते हैं। ये नहीं कहलाते कि नहीं वो तो यहूदियों का सेक्ट है या वो जो है वो ईसाइयों का सेक्ट है या ये हिंदुओं का सेक्ट है, ये कुछ थोड़ी कहलाते हैं, चाहे वो खवारिज हो चाहे वो रवाफिज हो। ठीक है ना, हिंदुओं का सेक्ट थोड़ी बन जाते हैं, वो इस्लाम ही का डिविएटेड सेक्ट बनते हैं ना। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर जो बात हो रही है, जन्नत में जाने की तो बात नहीं हो रही कि अहले किताब जो है वो जन्नत में जाएंगे, ये तो बात नहीं हो रही, यहाँ तो सिर्फ जबीहा के हलाल होने की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ जबीहा के हलाल होने की बात हो रही है ना, ये कोई थोड़ी कह रहे कि जो अहले किताब हैं या अहले किताब के डिविएटेड सेट्स हैं वो जन्नत में जाएंगे, ये तो किसी के लिए नहीं कह रहे, ना तो अहले किताब के लिए ना अहले किताब के डिविएटेड सेट्स के लिए, सिर्फ जबिया की बात हुई यहाँ पर। तो कहते हैं कि अच्छा, अगली हेडिंग हजरत ने लगाई कि सिर्फ नाम के यहूदी व नसरानी जो दर हकीकत दहरिए हैं वो इसमें दाखिल है। ठीक है, दहरिए, दहरिए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एथियस्ट। ठीक है, एथियस्ट यानी थीस्ट जो है ना वो कहते हैं खुदा को मानने वाले, खुदा। ठीक है, अरे फारसी का लफ्ज है ये खुदा, खुदा का मतलब होता है गॉड, अंग्रेजी का गॉड, अरबी में इसको इलाह कहते हैं, इलाह, खुदा इज इन फारसी, गॉड इज इन इंग्लिश, इलाह इज इन अरबिक। ठीक है, और उर्दू में भी, क्योंकि उर्दू में फारसी के ही अल्फाज आए हैं अरबी के ही अल्फाज आए हैं, इसलिए उर्दू में आप इसको खुदा को इलाह भी कह सकते हैं और खुदा खुद भी उर्दू का ही लफ्ज है, उर्दू का लफ्ज बन गया। ठीक है, अब मुसलमान क्या कहते हैं कि खुदा कौन है, अल्लाह। ठीक है, अल्लाह बस वही, उसके अलावा कोई भी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, और ईसाई उसके लिए कोई दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं, और यानी जिसके लिए वो ईलिया है ना, वो ईलिया जो खुदा का शहर, तो क्या नाम गालिबन ईला, ईला जो है वो खुदा के लिए जो यानी क्या कहते हैं, रमेक लैंग्वेज के अंदर ना, गालिबन रमेक लैंग्वेज के अंदर ईल का नाम इस्तेमाल होता है खुदा के लिए, और जो है वो हिंदू जो है वो उसके लिए ईश्वर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो एथियस्ट कौन होता है जो कि ये कहता है कि देयर इज नो गॉड, आगे कुछ नहीं कहता, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कुछ नहीं कहता, बल्कि कहता है देयर इज नो गॉड, दुनिया खुद से वजूद में आ गई है और एवोल्यूशन के जरिए से जो है वो बंदर जो है वो बाद में इंसान बन गए हैं, और जो है वो बिग बैंग थ्योरी गॉड के ऊपर यकीन रखता है कि बस एक बिग बैंग हो गई, खुद से हो गई, पता नहीं किसने कर दी, किसी ने नहीं करी, बस हो गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सारी चीजें बन गई, परफेक्ट जबरदस्त बन गई, ठीक है, कोई इसके अंदर मसला नहीं हुआ, सब कुछ सब खुद ही बन गया। इसको एथियस्ट कहते हैं, एथियस्ट। तो इसका तर्जुमा उर्दू में दहरिया बनता है, मुलहिद नहीं बनता। बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली लोग इसको मुलहिद कहते हैं, मुलहिद नहीं, मुलहिद बिल्कुल अलग चीज है, एथियस्ट मीन्स दहरिया। अच्छा आप क्या लिखा, शिर्क इज नॉट कमिटेड, अल्लाह कैन फॉरगिव, इफ शिर्क इज नॉट कमिटेड अल्लाह कैन फॉरगिव एज ऑफ हिज विल, देन व्हाई वी जज और पास कमेंट्स विद इन मुस्लिम डिविएटेड सेक्ट्स, विद इन मुस्लिम डिविएटेड सेक्ट्स, इफ शिर्क इज नॉट कमिटेड व्हाई वी पास कमेंट्स। वी पास कमेंट्स का मतलब क्या होता है आपका, पास कमेंट्स का मतलब क्या भाई, खुदा ना खासा, खुदा ना खासा आपका भाई, आपकी बहन, आपकी जो है वो नाउज बिल्ला कोई करीबी रिश्तेदार, ठीक है, वो शराब पीना शुरू कर दे, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये अल्लाह ताला माफ कर देगा इसको, ये नहीं कहेंगे कि तुम गलत काम कर रहे हो, ठीक है, या किसी और को नहीं बताएंगे कि शराब पीना जो है वो गलत काम है, ये नहीं कहेंगे। अगर कोई कहे कि भाई ये शराब पीना गलत काम है, इसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो उसको अब आप ये कहना शुरू कर देंगे कि व्हाई आर यू पासिंग कमेंट्स, अल्लाह कैन फॉरगिव, अल्लाह कैन फॉरगिव हुएवर होम एवर ही वांट्स, व्हाई आर यू पासिंग कमेंट्स, ठीक है। या चले शराब पीना तो आजकल के जमाने में कोई इतना बड़ा मसला नहीं समझा जाता ना, कोई जो है ना वो आप कोई और जो है, कोई और अजनबी स्ट्रेंजर वो आकर के आपके बहन को मारना शुरू कर दें, ठीक है ना, बहन को मारना शुरू कर दें या बेटी को मारना शुरू कर दें, या बेटी को जो है वो बहुत बुरा कोई मामला कर ले उसके साथ, तो आप जो है वो किसी के पास जाके कहें कि भाई इसने मेरी बेटी को मारा है, इसने जो है वो बहुत बुरा काम किया है मेरी बहन के साथ, ठीक है, मैं इसलिए इस तरह की मिसालें दे रहा हूँ ताकि आपको जरा सा समझ में आ पाए। तो दूसरा बंदा कहेगा व्हाई आर यू पासिंग कमेंट्स, अल्लाह कैन फॉरगिव हिम, तो कैन यू टेल हिम कि नो अल्लाह विल नॉट फॉरगिव हिम, आप कह सकते हैं उसको कि अल्लाह विल नॉट फॉरगिव हिम बिकॉज मेरी बहन के साथ इसने ऐसा किया, इस वजह से अल्लाह विल नॉट फॉरगिव हिम, हाउ कैन यू से दैट, अल्लाह कैन फॉरगिव हिम, राइट, अल्लाह कैन फॉरगिव हिम, चाहे आपकी बहन के साथ करे, आपकी बेटी के साथ करे, आपकी माँ के साथ जो भी करे, अल्लाह कैन स्टिल फॉरगिव हिम। वहां पर तो हमारे हमसे बर्दाश्त नहीं होता ना, और जहां पर हम किसी के अकीदा अल्लाह के खिलाफ ऐसा बन जाए, नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसका नजरिया ऐसा बन जाए, ठीक है, और सहाबा के बारे में ऐसा बन जाए, उसको अगर हम कहें कि ये गलत कर रहे हैं, तो हम कहते हैं व्हाई आर यू पासिंग कमेंट्स,
अरे
व्हाई आर यू पासिंग कमेंट्स, ठीक है ना। अब आपने तो सवाल कर लिया ना, आप तो फंस गए, लेकिन ये सवाल आज के दौर में सबके जहनों में, सबके जहनों में, बिकॉज आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने सवाल किया, ताकि किसी और के भी जहन में इस किस्म का मसला होगा तो वो भी जरा क्लियर हो ना, ठीक है, तो जजाकल्ला खैर आपने अच्छा सवाल था। ये तो आजकल तो यही वाला मामला चल रहा है ना कि भाई एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज राइट, ठीक है, व्हाई आर यू पासिंग कमेंट्स वगैरह का, उस वजह से दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एज, ठीक है। ये अगर हमारा क्लियर नहीं हुआ ना ये मसला, तो फिर एवरीथिंग एल्स इज जस्ट गोइंग टू वेस्ट, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्लियर करना एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। आजकल यूरोप के ईसाई यहूदियों में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो अपनी मर्दुम शुमारी के एतबार से यहूदी या नसरानी कहलाते हैं, यानी सेंसस के एतबार से वो यहूदी या नसरानी कहलाते हैं, मगर दर हकीकत वो खुदा की वजूद और किसी मजहब ही के कायल नहीं है, ठीक है ना, वो एथियस्ट हैं। आजकल की जो मॉडर्न साइंस है, जो कि डार्विन थ्योरी जैसी चीजों और न्यूटन, या पता नहीं उसका क्या किसका पढ़ा था हमने इसी क्लास के अंदर ना, न्यूटन ही से बात शुरू हुई थी तकरीबन 16 सेंचुरी में, उसने आकर के जो ऑर्गेनाइज रिलीजन को बिल्कुल नफी भी कर दी थी और पता नहीं क्या क्या, तो इन सब के असरात की वजह से वेस्ट में तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप के हों, चाहे जो है वो नॉर्थ अमेरिका के हों, साउथ अमेरिका के हों, वेस्टर्न यूरोप के हों, जो कि बस ये है कि बस नाम उनका जॉर्ज होगा, जॉर्ज इज अ क्रिश्चियन नेम, पीटर होगा, पीटर जो है वो क्रिश्चियन नेम है, कैथरीन नाम होगा, कैथरीन जो है वो क्रिश्चियन नेम है, लेकिन बिल्कुल वो डिनायर्स ऑफ गॉड है, ठीक है, एथियस्ट है। तो इसको कहते हैं कि भाई कंसेंसस के एतबार, सॉरी सेंसस के एतबार से तो वो यहूदी या नसरानी कहलाते हैं, मगर दर हकीकत वो खुदा की वजूद और किसी मजहब ही के कायल नहीं, ठीक है। ना तौरात व इंजील को खुदा की किताब मानते हैं और ना मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और पैगंबर तस्लीम करते हैं, ठीक है। यानी दोनों चीजें, या तो वो खुदा का कंप्लीटली इनकार करते हैं, ठीक है, जैसे कि खुसूसन साइंटिस्ट लोगों का ये मामला होता है या पहले होता था कम अज कम, या ये कि वो किसी भी ऑर्गेनाइज रिलीजन को नहीं मानते, यानी यहूदियत इज एन ऑर्गेनाइज रिलीजन, ठीक है ना, एक बाकायदा एक नज़म है यहूदियत के दीन का, उसी तरह नसरानियत एक बाकायदा मुनज्जम दीन है, ठीक है, वो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, हाँ वो कहते हैं यस देयर इज समवन, वो जो साइंस के बिलाखिर जो वो उस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं कोई तो क्रिएटर है, बहुत से साइंसदान इस नतीजे पे पहुंच गए हैं, या साइंस पढ़े जो भी लोग अब इस नतीजे पहुंचे कि हाँ कोई तो है, क्योंकि ये सब कुछ खुद से नहीं हो सकता, लेकिन हम किसी रिलीजन को नहीं, तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, अगरचे कि वो एथियस्ट नहीं है, ठीक है। इनके लिए एक दूसरी टर्म भी इस्तेमाल होती है, एग्नोस्टिक, इस तरह के लोगों के लिए ना एग्नोस्टिक की टर्म इस्तेमाल होती है, जो कि खुदा को माने ना माने, मान भी ले लेकिन ना भी माने, और ऑर्गेनाइज रिलीजन को भी ना माने, बस वो अजीबोगरीब किस्म के मखमसे में है कि मैं मुंह से इनकार नहीं करूंगा, दिल से तो मैंने इनकार कर दिया है लेकिन मुंह से इनकार नहीं करूंगा, क्या पता मरने के बाद पता चले कि वाकई था ये सब कुछ, तो क्योंकि मैंने मुंह से इनकार नहीं किया इस वजह से जो है ना मैं बच जाऊंगा, ठीक है। तो उनके नजदीक जो है ना वो दिल के इनकार की कोई हैसियत ही नहीं, दिल से इनकार कर रहे हैं मुंह से इनकार नहीं कर रहे हैं, क्यों, कि व्हाट इफ इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू आफ्टर आई डाई, तो फिर मैं बच जाऊंगा, और अगर मैंने मुंह से भी इनकार कर दिया तो फिर जो है मैं उसमें भी नहीं बचूंगा, मरने के बाद अगर वो सही हुआ तो भी मैं नहीं बचूंगा, ठीक है। तो अच्छा मजे की बात ये है कि ऐसा वो करते क्यों है, ऐसा वो क्यों करते हैं कि मुंह से इनकार कर दिया तो मारा जाऊंगा और मुंह से इनकार नहीं किया तो नहीं मारा जाऊंगा मरने के बाद। हम तो ये कहते हैं ना कि अगर हमने, हम मुसलमान क्या कहते हैं कि दिल से इकरार करना भी जरूरी है और मुंह से इकरार करना भी जरूरी है, इकरारों बिल लिसानी व तस्दीकों बिल कल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि दुनिया में भी आप मुसलमान कहलाएंगे और मरने के बाद भी आप मुसलमान कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने दुनिया में दिल से तो इनकार कर दिया, मुंह से इनकार नहीं किया, तो हम, हमारे नजदीक क्या होगा, दिल से तो इनकार कर दिया लेकिन मुंह से इनकार नहीं किया, तो इस्लाम में क्या होता है, ये आपसे पूछना है। जो एग्नोस्टिक है ना उनके यहां तो दिल से इनकार कर दिया तो मसला कोई नहीं है, मुंह से इनकार कर दिया तो सारा मसला है, मरने के बाद भी मारे जाएंगे, ठीक है ना। हमारे नजदीक क्या है कि अगर दिल से इनकार कर दिया और मुंह से इनकार नहीं किया तो फिर क्या होगा, मुनाफिक, ठीक है। और दूसरा एक और मसला दुनियावी एतबार से क्या मसला होगा, ठीक है, दुनियावी एतबार से क्या मसला होगा कि हाँ आपके ऊपर कुफर का फतवा लगेगा और आपकी बेगम साहिबा जो है ना वो आपको छोड़ के चली जाएंगी, अगर वो ईमान वाली हुई और नेक परहेजगार हुई तो वो आपको छोड़ के चली जाएंगी, क्योंकि आप तो काफिर हो चुके हैं, आपने मुंह से इनकार कर दिया है, अब आप जो है वो काफिर हो चुके हैं, अब जो है वो उनका आपका निकाह टूट गया है, बेगम साहिबा हैज टू लीव। और दूसरी बात ये भी कि विरासत भी आपकी जारी नहीं होगी, आपको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है, विरासत में आपको हिस्सा नहीं मिलेगा अपने अब्बा हुजूर के इंतकाल के बाद, ठीक है, और इस तरह के कुछ और शरीय मसाइल। लेकिन आखिरत में तो दिल का इनकार बस इसी को देखा जाए, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये वाला शरीर मसला है, उनके यहाँ जो है ना वो मुंह से इनकार जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों में जो है वो बर्बादी है, और दिल के इनकार की कोई मसला नहीं है, दुनिया में भी चलता है आखिरत में भी दिल का इनकार चल जाएगा। अजीब गरीब किस्म का मसला सा, मुझे सबसे ज्यादा इसी बात ने स्ट्राइक किया था, मेरा जो है ना वो आप लोगों को बताया भी है कुछ लोगों को, कि पूरा एक दिन गुजरा था एक एग्नोस्टिक के साथ, ठीक है, तो उस एग्नोस्टिक से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या बिलीफ है, तो उसने मुझे ये बताया, तो मैंने कहा यार ये क्या चीज होती है। हालांकि उस वक्त कुछ भी नहीं था इस हदीस को, कुछ पता नहीं था, बस नमाज वमाज पढ़ते थे थोड़ा बहुत, जो अपना रिवायती दीन होता है उसका ही पता था, लेकिन ये बात हलक से उतरी ही नहीं, मतलब कान से अंदर गई नहीं, कि ये मतलब क्या है इसका कहने का, कि मैं दिल से इनकार करता हूं लेकिन मुंह से इनकार नहीं करता, मरने के बाद जो है वो मेरी बचत हो जाएगी अगर वाकई डे ऑफ जजमेंट है, ठीक है, दे थिंक दे विल डिबेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट इफ इट हैपेंस, दे विल डिबेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, डिबेट तो वो करेंगे ना काफी जो है वो कयामत के दिन बहस करेंगे अल्लाह ताला से। अच्छा ये तो कुरान से साबित है। बहरहाल तो कहते हैं ये जो एथियस्ट लोग हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज में या क्रिश्चियन सो कॉल्ड कंट्रीज के अंदर जो रहते हैं, तो दर हकीकत वो खुदा की वजूद और किसी मजहब ही के कायल नहीं है, ना तौरात और इंजील को खुदा की किताब मानते हैं और ना मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और पैगम्बर तस्लीम करते हैं। ये जाहिर है कि वो शख्स मरदम शुमारी के नाम की वजह से अहले किताब के हुक्म में दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। अपनी मर्दम शुमारी का जो लफ्ज हजरत ने इस्तेमाल किया है ना, तो हम इसमें थोड़ी सी और डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई जब वो सेंसस हो रहा था तो उन्होंने अपना नाम जो है वो क्रिश्चियन लिखवाया, तो क्रिश्चियन अगर लिखवाया है उन्होंने पेपर्स के अंदर तो फिर वो अपने आप को क्रिश्चियन ही कहते हैं ना, ठीक है। तो मर्दम शुमारी का यहाँ पे जो हजरत ने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ये एक तरह से मुहावरतन इस्तेमाल किया, असल हकीकतन एक्चुअली इसका यहाँ पे रेलिवेंस नहीं है, लेकिन मुहावरतन का मतलब ये है बस जो है वो आपके, यानी इसको दूसरे अंदाज में इस तरह कहा जा सकता है कि माँ बाप ने जो है ना वो आपका नाम क्रिश्चियन लिखवा दिया था, इसको कहेंगे ऑन पेपर दे मे बी कंसिडर्ड क्रिश्चियन, ठीक है। माँ बाप ने जब पैदा, माँ बाप क्रिश्चियन थे वो बाइबल पे यकीन रखते थे, उन्होंने जब बेटा पैदा हुआ बेटी पैदा हुई तो उसका नाम जो है वो अपने साथ साथ जो है क्रिश्चियन लिखवा दिया, लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ उसने कहा नहीं, मैं कोई नहीं मानता क्रिश्चियनिटी को, मैं तो खुदा को ही नहीं मानता, मैं तो क्रिश्चियनिटी के रिलीजन को ही मानता, लेकिन नाम तो पेपर्स के अंदर उसका एज अ क्रिश्चियन लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर मर्दमशुमारी से ये मुराद है, ये नहीं कि घर में जो हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में जब कभी मर्दमशुमारी हुई थी, पता नहीं जब बच्चे छोटे थे तो उस वक्त आए थे ना वो एजेंट्स गवर्नमेंट के, तो उन्होंने आपसे फॉर्म भरवाया था तो पूछा था अभी आपका दीन क्या है, तो आपने लिखवाया था इस्लाम लिखवाया था, तो इस तरह से कोई अपना नाम बकायदा पेपर में लिखवा रहा है कि भाई मेरे लिए आप क्रिश्चन लिखें, तो दैट्स इट, वो क्रिश्चन ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली उस तरह के सेंसस की बात नहीं हो रही है, बल्कि माँ बाप के लिखवाए हुए नाम की बात हो रही है बस। अच्छा आगे फरमाते हैं कि नसारा के बारे में जो हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि उनका जबीहा हलाल नहीं, उसकी वजह ये बतलाई कि ये लोग दीन नसरानियत में से बजुज शराब नोशी के और किसी चीज के कायल, ठीक है, यानी चूंकि ये बस शराब नोशी करते हैं, इसके अलावा ये तौरात के भी कायल, यानी तौरात के भी कायल नहीं है इंजील के भी कायल नहीं, तो इस वजह से ना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खास जगह के रहने वालों को कहा कि ये नसरानी नहीं है, ठीक है। तो वो भी इसी तरह के ही थे, यानी ऑन पेपर नसरानी, तो जैसे कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू का इरशाद है कि इब्ने जौजी ने सनद सही के साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का यह कौल नकल किया है कि नसारा बनी तुगलक के ज़बाइह को नहीं खा, क्योंकि उन्होंने मजहब नसरानियत में से शराब नोशी के सिवा कुछ नहीं। इमाम शाफी ने भी सनद सही के साथ ये रिवायत नकल की है, ठीक है। तो अली ताला का ये कौल ये मौजूद है किताबों के अंदर, लेकिन उसकी आगे मजीद तफसील ये लिखते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू को बनी तुगलक के मुतालिक यही मालूमात थी कि वो बेदीन है नसरानी नहीं है, यानी इंजील का इनकार कर वो नसरानी नहीं है, इन तक ये खबर पहुंची थी, अगरचे कि वो नसरानी कहलाते हैं, दूसरे लोग उनको नसरानी समझते हैं, जैसे कि ऑन पेपर वो नसरानी है तो दूसरे लोग उनको नसरानी समझेंगे, इसलिए उनके जबिया को अली रज़ियल्लाहु ने मना फरमा दिया। जमहूर सहाबा व ताबईन की तहकीक ये थी कि ये भी आम नसरानी की तरह है, ठीक है, तो दूसरे लोगों ने जो जमहूर साहबा यानी अली रतान के अलावा जो साहबा थे उन्होंने जब रिसर्च करी तो वो इस नतीजे पहुंचे कि नहीं ये भी आम नसरानियों की ही तरह है, बिल्कुल दीन के मुनकर नहीं, इसलिए उन्होंने उनका जबीहा भी हलाल करार दिया। ठीक है, तो यहां पर अगेन वही वाला पॉइंट आता है कि जो अहले हक उलमा होते हैं ना, ठीक है, जो दीन को प्रिजर्व करने की मेहनत करने वाले उलमा, वो अहले हक उलमा कहलाते हैं। तो उन उलमा में से जो इज्तिहाद का दर्जा रखते हैं, यानी कितना उनके पास तफसीली और गहरा इल्म होता है कि वो इज्तिहाद करने की अहल होते हैं, तो उनका इज्तिहाद जो है ना वो हमारे दीन के अंदर किसी को हलाल करार, किसी चीज को हलाल करार दे सकता है और किसी चीज को हराम करार दे सकता है। ठीक है, एज लॉन्ग एज कि उनका इज्तिहाद कुरान और हदीस की नस के खिलाफ ना, बल्कि किसी नए मसले के बारे में, ठीक है, जैसे बनू तुगलक के लोग जो है वो ईसाई हैं कि ईसाई नहीं है, ये कुरान मजीद में तो नहीं लिखा हुआ कि बनी तुगलक के लोग जो है वो नसारा हैं या नसारा नहीं है, ना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी तुगलक के लोग जो है नसारा हैं या नसारा नहीं है, नहीं है ना, नहीं फरमाया कुरान मजीद ने, ना जो है वो हदीस मुबारका ने, तो उलमाए उम्मत जो है वो इज्तिहाद करेंगे। ठीक है, अब इज्तिहाद के जरिए से जिसने कहा हलाल है तो जो लोग उनके इज्तिहाद को फॉलो करेंगे उनके लिए ये हलाल होगा, और दूसरी तरफ दूसरे मुज्तहिदीन ने फरमाया कि ये हराम है क्योंकि ये लोग जो है ये नसरानी नहीं, हमारी तहकीक है कि भाई ये लोग तो नसरानी है ही नहीं, तो उन्होंने कहा इनका जबिया जो है वो हराम होगा। अब जो लोग उनको फॉलो करेंगे उनके लिए ये हराम है, उनके लिए ये हलाल नहीं हो सकता क्योंकि मुज्तहिद ने तो इज्तिहाद किया ना, जो फॉलोअर्स हैं वो तो मुज्तहिद नहीं है, उनकी क्या जिम्मेदारी है कि वो मुज्तहिद की इज्तिहाद को फॉलो करें, और मुज्तहिद का इज्तिहाद इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज हलाल हो जाएगी उससे या कोई चीज हराम हो जाएगी उससे, फॉलोअर्स के लिए, अवाम के लिए। ठीक है, मुकल्लिद कहते हैं उसको टेक्निकल इस्तलाह में, मुकल्लिद के तकलीद करने वाले के लिए हलाल या तकलीद करने वाले के लिए हराम। ठीक है, अब जो है ना मसला आज के दौर का ये हुआ हुआ है कि हम जो है वो मुज्तहिदीन को नहीं मानते, ठीक है, हम जो है वो अपने अकल को मानेंगे या अपनी जो है वो ख्वाहिश को मानेंगे, और जी बस जी ये ऐसे मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादा ठीक है, वो मैं समझता हूँ ये ज्यादा ठीक है, भाई आप तो मुज्तहिद नहीं है, तो आपके किसी चीज को हलाल हराम करार देने से तो वो चीज हलाल हराम नहीं होगी ना, आपकी ख्वाहिशात की बुनियाद पे तो कोई 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 अहमियत नहीं है आपकी ख्वाहिशात की। ठीक है, तो बनी तगलब जी तुगलब, अच्छा तगलब लिखा हुआ है, ठीक है, जदा मिलता मैं तुगलब कहीं पढ़ा था। तो यानी इज्तिहाद इज दैट मोड। अब देखिए ये बात तो आपने सुनी होगी कि जब कोई इंसान हराम खाता है तो उसकी रूह के ऊपर इसका असर पड़ता है, क्योंकि हराम खाना गुनाह है और गुनाह का जो है असर है वो उसके दिल के ऊपर पड़ता है, दिल स्याह होना शुरू हो जाता है ना, ऐसी बात, हराम खाने से या हराम करने से एक काला नुक्ता जो है वो दिल के ऊपर पड़ जाता है। ठीक है, तौबा कर ले तो वो धुल जाता है, नहीं तौबा करे तो वहीं पर रहता है, फिर दूसरा गुना करेगा फिर एक नुक्ता पड़ेगा, फिर तीसरा गुना करेगा फिर एक नुक्ता पड़ेगा, फिर चौथा गुना करेगा, हत्ता के दिल पूरा स्याह हो जाएगा, उसकी सरफेस पूरी स्याह हो जाएगी। तो हराम खाना ये इतना इंसान के ऊपर उसका असर पड़ता है, लेकिन जब इज्तिहाद की रूह से वो कोई काम कर रहा है मुज्तहिदीन को फॉलो करके तो ये नहीं हो रहा, तब उसके दिल के ऊपर जो है वो काला नुक्ता नहीं पड़ रहा, हालांकि दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए के नजदीक जो है वो ये हराम काम कर रहा है, दूसरे ग्रुप ऑफ मुज्तहिदीन के नजदीक ये हराम काम कर रहा है, लेकिन ये जिन मुज्तहिदीन को फॉलो कर रहा है उनके नजदीक ये हराम नहीं है, तो अब इसके दिल के ऊपर उसका मनफी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई फॉलो जो है वो इन मुज्तहिदीन को करता है लेकिन करता जो है वो किसी और को, यानी अमल कोई और कर रहा होता है, तो उसके लिए चीज नुकसान देह हो जाएगी, क्योंकि भाई आप तो इनको मुश्ताहिद मानते ही नहीं, तो फिर आपने इनको क्यों क्यों फॉलो किया? आपने जो है वो, यानी ये पिक एंड चूज वाला मसला फिर शुरू हो जाता है। पिक एंड चूज करने से फिर इंसान के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं। अच्छा टाइम कितना हो गया, 8:04 हो गए, तो टाइम से हम ऊपर बढ़ गए। तो बाकी जो है वो, या ये बस ये हेडिंग अगर हम बस मुकम्मल कर लेंगे जल्दी से, तो फरमाते हैं कि जमहूर उम्मत कहते हैं कि नसरानी का जबीहा हलाल है, फुआ बनी तगलब में से हो, तगलब में से हो, तगलब में से हो, या उनके सिवा किसी दूसरे कबीले और जमात में से हो। इसी तरह हर यहूदी का जबीहा भी हलाल है। खुलासा यह है कि जिन नसरानियों के मुताबिक ये बात यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि वो खुदा की वजूद ही को नहीं मानते, या हजरत मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मानते, वो अहले किताब के हुक्म में नहीं। ठीक है, यहूदियों की जो जबीहा है वो आजकल उसको अपनी जुबान में कोशर कहते हैं। ठीक है, तो कोशर जो है वो मुसलमानों के लिए हलाल है, एज लॉन्ग एज वो कोशर कर रहे हैं। अगर वो कोशर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो हलाल नहीं होगा, लेकिन जब तक आप उसकी तहकीक ना हो कि वो क्या कर रहे। ठीक है, अगर आपको तहकीक हो जाए कि भाई उसने जो है वो कोशर नहीं किया, बल्कि खाली जो है वो झूठी सर्टिफिकेशन दे दी है, जैसे कि अमेरिका के अंदर हमने देखा भी है, सुना, मतलब देखा तो खैर मैंने अपनी आंखों से नहीं है, लेकिन सुना है लोगों का बताया हुआ कि वो आकर के जो है ना वो खाली साइन करके चला जाता था, रिश्वत दे करके, जो यहूदी रबाई आता था वो रिश्वत लेकर के चला जाता था, और वो कोशर को कोई वो मॉनिटर वगैरह नहीं करता था। तो ऐसा भी होता है, अमेरिका में भी सब कुछ होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम आज के काश रोकते हैं। इंशाल्लाह बाकी जो है खाने पीने का मसला भी मजीद चल रहा है, अगले पेज से इंशाल्लाह फिर निकाह शादी वगैरह का भी मसला शुरू होगा। ठीक है, जजाकुम अल्लाह खैर, वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।